हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर पीछे आवाज नहीं जा रहा है, यहाँ स्पेस से आ सकते हैं। हरे कृष्णा, इज इट ओके? पीछे तक सुनाई पड़ रहा है? नहीं, तो कल हम चर्चा कर रहे थे किसी चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार इस स्थान में अपने निजजन को चुन करके उनको शिक्षा दे रहे थे। जब उन्होंने बल्भाचार्य के घर में गए तो वहाँ उनको बहुत बड़े पंडित, मैथिली पंडित रघुपति उपाध्याय मिले। रघुपति उपाध्याय भी उनको प्रभु कहे न कहते हो पढ़े कृष्ण लीला, प्रेम वैसे प्रभुर देह मन आलवाइला। प्रेम देखी उपाध्याय हैल चमत्कार, मनुष्य नहे यहाँ कृष्ण करिल निर्धार। रघुपति उपाध्याय भी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम के व्यवहार को देख करके ये निर्णय कर लिए कि मनुष्य नहीं है तो साक्षात कृष्ण है। तो महाप्रभु उनको भी समझे ये भी कृष्ण भक्त है, अपने भक्त को तो भगवान पहचान लिए। प्रभु कहे उपाध्याय श्रेष्ठ मान काय, बोले उपाध्याय जी बताइए इतने सारे भगवान है सबसे श्रेष्ठ आप किसको मानते हैं? श्याम रूपं परंग रूपं कहे उपाध्याय। उपाध्याय कहे कि भगवान श्याम सुंदर ही सर्वश्रेष्ठ आराध्य रूप है। श्याम रूप वास स्थान श्रेष्ठ स्थान क्या, बोले भगवान श्याम सुंदर श्रेष्ठ है। भगवान तो सर्वत्र हैं, सबसे अच्छा सब समय ज्यादा कौन से जगह में रहते हैं? वास स्थान काय पुरी मधुपुरी वरा कहे उपाध्याय। उपाध्याय को है कि मथुरा वृंदावन ही उनके श्रेष्ठ वास स्थान है। बाल्य पौवंड कैसुर श्रेष्ठ मान काय, भगवान की श्याम सुंदर की जो अलग अलग अवस्था है, बाल्य अवस्था पौवंड अवस्था कैसुर अवस्था, इस अवस्था से सर्वश्रेष्ठ अवस्था किसको मानते हैं? कि अप एंड डाउन होता है, मुझे लगता है ना? मैं तो थोड़ा किशोर कंधेयं कहे उपाध्याय, सबसे किशोर अवस्था ही सर्वश्रेष्ठ है। उपाध्याय कहे रसगण मध्य तुम्हें श्रेष्ठ मान काय, आद्य एव परो रस कहे उपाध्याय। इतने सुनने के बाद महाप्रभु तुरंत खुश होकर बोलने लगे प्रभु कहे भाल तत्व सिखाई ला मुरे, ए तो बोली श्लोक पढ़े गद गद स्वरे। गदगद होकर महाप्रभु बोलने लगे श्याम में परंग रूपं पुरी मधुपुरी वरा वय कैसुरकेयं आद्य एव परो रस। इस प्रकार श्याम रूप ही सर्वश्रेष्ठ रूप है, मथुरा वृंदावन ही सर्वश्रेष्ठ पुरी है, कैसुर वयस ही सर्वश्रेष्ठ वयस है, और आद्य रस श्रृंगार रस ही सर्वश्रेष्ठ रस है। इस प्रकार कहकर प्रभु अनुकालिंगन की विदा लेकर के जब आए तब प्रयाग आईला भट्ट गोसाई रे लैया, लोक भिड़ भई प्रभु दशा स्वमेध जाया। प्रयाग में तो आए लेकिन यहाँ बहुत भीड़ था, ये देख करके दशा स्वमेध घाट में गए। रूप गोसाई रे शिक्षा करान शक्ति संचारिया, कृष्ण तत्व भक्ति तत्व रस तत्व आदि, ये सब तत्व ज्ञान श्री रूप गोस्वामी को दिए। तो उसका वर्णन श्री इस प्रकार वर्णन है श्री कविराज कविकरण कपूर ने चैतन्य चंद्रोदय में इस प्रकार वर्णन किए हैं। यही मत दस दिने प्रयागे रहिया, श्री रूपे शिक्षा दिल शक्ति संचारिया। 10 दिन तक इसी प्रयाग में रह करके प्रतिदिन स्पेशल क्लास लिया करते थे। तो मतलब हम लोग की शिक्षा लेना चाहिए प्रयाग में। सबसे कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है? सुनना सिख्या। महाप्रभु ने ही सुनाए, सिख्या दिए। सबसे भक्ति के आचार्य रूप गोस्वामी को महाप्रभु ने यही सिख्या दी, बोले सुनो ये बताते हैं भगवान। प्रभु कहे सुन रूप भक्ति रसेर लक्षण। महाप्रभु बोले जैसे भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं तत् सुनो सुनो, तो इस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु ही योग्य पात्र तत् सुनो सुनो। सुन रूप भक्ति रसेर लक्षण, भक्ति रस का लक्षण बताते हैं। सूत्र रूपे कहीं विस्तार ना आ जाए वर्णन, उसको मैं सूत्र रूप में कहूँगा। विस्तार तो समय नहीं है, केवल 10 दिन है, आपके पास भी टाइम नहीं, मेरा पास भी टाइम नहीं है, तो बहुत प्रिसाइज में कहूँगा मैंने। सूत्र भगवान शुरुआत कैसे करते हैं शिक्षा का, पारावार शून्य गभीर भक्ति रस बिंदु तुम्हार चखा इत तार कही एक बिंदु। पारावार शून्य, पारावार कहते हैं समुद्र को, तो इस समुद्र में पूरा ढूंढने से भी नहीं मिलता। पारावार शून्य अति गभीरतम में, पूरे समुद्र के नीचे गभीरतम तल भाग में जो भक्ति रस सिंधु है, भक्ति रस सागर प्रवाहमान है, तुम्हारा चखाइते तारा कही एक बिंदु। तुम आपको टेस्ट देने के लिए, जस्ट टू टेस्ट इट, टेस्ट करने के लिए एक ड्रॉप तुझे दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो मिलता नहीं, पूरे पारावार संसार को ढूंढ लो मिलेगा नहीं, ये तो बहुत नीचे बैठा हुआ है भक्ति सागर, वहाँ से एक ड्रॉप लाकर तुम्हें चस्का चखा रहा हूँ, तुम चाख लो। यही मत ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण, बोले इस प्रकार ही ब्रह्मांड है, ऐसे अनेक ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की बात कहते हैं। एक ब्रह्मांड में 14 प्लैनेट्स होते हैं, जैसे ये बिल्डिंग 1, 2, 3 फ्लोर बिल्डिंग है, 3 महला घर है, तो एक ब्रह्मांड कितने महला घर होता है, 14 फ्लोर बिल्डिंग होता है। तो इसमें हम लोग 7th फ्लोर में है, ये जो पृथ्वी लोक है 7th फ्लोर है, तो इसी एक ब्रह्मांड कहने से पाताल से लेकर के सत्यलोक पर्यंत एक ब्रह्मांड माना जाता है। तो बोलते भगवान कहते हैं यही मतलब ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण, केवल इसी लोक में नहीं, मतलब जितने घर है फ्लोर है, हर फ्लोर में अनेक अनेक जीव हैं। यही मतलब ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण, अनंत मतलब नो लिमिट, गिनती नहीं किया जा सकता कितने जीव हैं, अनंत जीवगण। और ये जीवगण को डिवीजन कैसे, 84 लाख जोनित कराई भ्रमण, ये ब्रह्मांड में जितने वैरायटी के जीव हैं, अगर सबको अलग अलग करके काउंट किया जाए, ये 4 पैर वाले, 2 पैर वाले, 1 पैर वाले, बिना पैर वाले, यही से सब लक्षण देख करके गिने तो टोटल कितने होंगे, 84 लाख, 84 लाख प्रकार के डिजाइन के जीव ये पूरे 14 लोक में भरे हैं अलग अलग प्रकार के। अब ओ कैसे कैसे जलजा नवलक्ष्याणी स्थावरा लक्ष्य विंशति, भगवान कहते हैं कि इसमें जलचर प्राणी कितने प्रकार के हैं, केवल पानी में रहने वाले 9 लाख प्रकार के। आप और हम कितने प्रकार के जानते हैं, हम लोग तो चंडीगढ़ में बाथरूम में नहाते हैं, वहाँ तो जलचर प्राणी होते ही नहीं, जो तालाब में नदी में नहाते हैं वो भले कोई देखेंगे, बाथरूम में कहाँ मछली कछुआ कहाँ देखेंगे, कहाँ कुछ होंगे नहीं, फिल्टर वाटर, वहाँ जलचर तो एक भी नहीं देखेंगे आपको, पूरा जिंदगी गया जल में होता है, नहाते डली कहाँ, पानी तो जीव तो नहीं देखते, लेकिन जल होता है, आप तालाब में नदी में समुद्र में जाएंगे जलचर प्राणी देखेंगे। और जो तालाब नदी में नहाते हैं वो भी कितना प्रकार जानते हैं, कोई मछुआरा कोई पूछो बड़े मुश्किल से 20-25 बता पाए, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है, द रिपोर्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर का रिपोर्ट क्या है, बिल्कुल आज इट इज गिनती, नॉट ए सिंगल कम है कि ज़्यादा, 9 लाख प्रकार के गिनती पक्का, पूरा गिन कर देख लो, छान कर पूरे ब्रह्मांड में एक ज्यादा नहीं कम नहीं, भले आपको पता हो ना हो, दैट्स अनदर थिंग, बट 9 लाख वैरायटीज ऑफ एक्वाटिक्स जलचर प्राणी, जल जा नम लक्ष्याणी स्थावरा लक्ष्य विंशति, बोले पेड़ पौधे लते पते, ये तो आप सबके घर के सामने पीछे आगे पीछे रूप ट्रप में भी लगाते हैं, बोले कितने वेरायटी, अभी तक हाईटेक स्थिति में भी कोई साइंटिस्ट, कोई अभी ज्ञानी विज्ञानी गिनती करके बता नहीं सका, चैलेंज करके इतने वैरायटी के, कोई बोटानिकल रिसर्च करके बता नहीं सकता कि इतने प्रकार के लते पते पौधे हैं। लेकिन वो क्या बताएंगे, उनसे पहले बहुत पुराना रिपोर्ट पड़ा है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर हो ना, बोला मैंने बनाया, मैंने मैन्युफैक्चर, मुझे पता कितने वेरायटी बनाए। तो बताए कि 20 लाख प्रकार के लता पता पेड़ पौधा मैंने बनाया, टोटल 20 लाख प्रकार के स्थावर अलख्य विंशति, जो चल नहीं सकती स्थिति, ऐसे लता कुर्मयो रुद्र संख्या का, रेंगने वाले प्राणी जो इसे इसे चलते हैं, तो कितने प्रकार के हैं, 11 लाख, रुद्र मतलब 11 लाख प्रकार की रेंगने वाले प्राणी की। आप तो 2-4-5 देखे होंगे कि नई बारिश के समय निकलते होंगे। कुर्मय रुद्र संख्या का पक्षिणाम दशलक्षाणी, 10 लाख प्रकार के चिड़िया आकाश में उड़ने वाले हैं। आप कितने जानते होंगे, चंडीगढ़ है ना पक्षी, कितने वेराइटी जानते होंगे। अब किसी की वो दुनिया पूछ लो, कोई बता सकता है बात नो, ना कोई गिनती कर पाएंगे, ना उम्र भर गिनती करेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे कितने चिड़ियाखाना जाकर गिनेंगे। क्योंकि वो कहते हैं केवल भारतवर्ष नहीं, पृथ्वी लोक नहीं, ब्रह्मांड में है, तो पृथ्वी तो वन फ्लोर है, मुरली इज काउंटेड फ्रॉम 14 फ्लोर्स, टोटल 10 लाख वेराइटी, क्योंकि मैन्युफैक्चर वो बताते हैं, मैंने प्रोड्यूस किया। पक्षी नाम 10 लाख प्रकार के पक्षी, और पशव विंश लक्षाणी, 4 पैर वाले पशु कितने प्रकार के हैं, 20 लाख प्रकार के। आप पूरे भारतवर्ष से चिड़ियाखाना गिन, विश्व भर के चिड़ियाखाना गिन कर आ जाए, 100 भी नहीं होंगे, तो 20 लाख प्रकार के पशु। और मनुष्य चतुलक्षाणी, 4 लाख वैरायटी के मनुष्य ही। आप बोलेंगे भाई मनुष्य जितने हैं सबका 2 हाथ 2 पैर तो होता है, किसी का तो ऐसे नहीं कि 1.5 हाथ 2.5 पैर, ऐसे तो होते ही नहीं है ना, नहीं किसी को एक्सीडेंट हो जाए तब भी लकड़ी फकड़ी जोड़ जाड़ कर प्लास्टिक का तो ही 2 ही रखते हैं है ना, नहीं तो फिर 4 लाख कैसे हुए भाई। भाई अलग अलग वेराइटी में उनके रूप रंग सब बदलता रहता है देखने में, मनुष्य तो देखने में 2 आँख 2 कान 2 हाथ 2 पैर 1 पेट सबके ऐसे ही होते हैं, वो फिर 4 लाख वेराइटी हाउ, किसी को समझ में आता है किस 4 लाख वेराइटी, 4 लाख वेराइटी इसलिए ही 4 लाख वेराइटी की चेतना है। क्या है चेतना, समझते ना क्या है सोच, आपके जो विचार है टोटल विचार मनुष्य के अंदर इतना ही गिनती करके दिए हैं, बिल्कुल कंप्यूटर फिट किया गया, टोटल 4 लाख वेराइटीज ऑफ थिंकिंग चेतना मनुष्य को इतना ही काम, इतने में खेल है। तो इस प्रकार चतुर्लक्षणी मानव, तो जितने प्रकार 84 लाख जीव जंतु बने, सबसे कम कौन है, मनुष्य, सबसे कम मनुष्य। तो ऐसे भगवान ने सृष्टि किए हैं, सृष्टिकर्ता ने कि एक एक करके बनाया, शुरू से जलचर से शुरू, जड़ जाना वाले खंड जलचर से शुरू करते 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 पशवह के बाद में मनुष्य की जोनी बनाया, प्रमोशन करते करते, जैसे अब क्लास 1 से शुरू करते हैं हाई स्कूल तक जाते हैं पढ़ते प्रमोशन होते होते, ठीक इसी प्रकार ये प्रमोशन बेसिस से इवोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं। सबसे पहले जलचर प्राणी, इसलिए जो दशावतार भगवान ने अवतार लिए, सबसे पहले कौन अवतार लिए, मत्स्य अवतार, फिर कछुआ, ये सब जलचर प्राणी, फिर उसके बाद में वराह, फिर पशु है ना, तो इसी प्रकार इवोल्यूशन प्रोसेस होता है, तब पशु मनुष्य मिक्स हुए तो फिर मनुष्य हुए, इस प्रकार से इवोल्यूशन प्रोसेस होते हैं, तो होते होते मनुष्य होते हैं। तो मनुष्य भी कहते हैं कि जो मनुष्य जो नहीं है सबसे फाइनल प्रोडक्ट है, जो मैन्युफैक्चरर है रिफाइन करते 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 फुल्ली फुल रिफाइंड क्रिस्टल क्लियर, ये है मनुष्य जो, उसके ऊपर रिफाइन नहीं है, उसके बाद मनुष्य जो नहीं एंड होगा, उसके बाद देवर राक्षस गंधर्व किन्नर वो होंगे मनुष्य जो नहीं, और उनको भी मनुष्य जो में ये मसला डाल के रखे हैं मैन्युफैक्चरर ने, ये सुविधा फैसिलिटी मनुष्य में दिए हैं कि केवल मनुष्य कर्म करके इतने इनकम कर सकता है कि 84 लाख जोनी में भटक सकता है, इतने कमाई कर देगा, बाकी कोई कमाई नहीं करते। मनुष्य जोनी से नीचे जितने जोनी है 84 लाख माइनस 4 लाख कितने हुआ, 80 लाख जोनी वो काम दाम नहीं करते, केवल भोगते हैं, करते हैं भोगते हैं, करते हैं भोगते हैं, और ऊपर में जितने देवजोनी आदि ये भी सब भोगते हैं, भोग जोनी, चाहे दुख भोग हो चाहे सुख भोग हो, भोगना तो है, दोनों ही सुख भोग दुख भोग दोनों ही भोग जोनी है, केवल कर्म कमाई करने वाले तो मनुष्य जोनी है। जैसे आप ट्रेन में सफर करेंगे, ट्रेन में जहां मर्जी तहां टिकट खरीद सकते हैं, टिकट कहां खरीदेंगे, प्लेटफॉर्म स्टेशन में, स्टेशन में खरीदना पड़ेगा, टिकट भी नहीं करें फैन कर। तो इस प्रकार कमाई तो केवल मनुष्य जन्म में करना पड़ेगा, वो घूमने के लिए पूरे संसार बड़ा है, पूरे टप टुपट पाताल से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत घूमते रहेंगे यही इनकम करके, ये फैसिलिटी दिया। और ये फैसिलिटी दिया है कि ये जो कर्म बंधन है जो पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत घुमाता है, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जी भी बात आएगा, इसमें अगर ये भ्रमण से बंधन से निकलना भी चाहते हैं, निकलने के लिए गेट कहाँ पे है, चौराही यही यही यहीं पर गेट है निकलने, बाकी किसी जन्म में गेट नहीं है। इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस एंटेंगलमेंट तभी भी मनुष्य जन्म, सारे सुविधा इसी में है। तो ये कह करके यही मत ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लक्ष जो नीते कर भ्रमण के साग्र सत्य कभोग पुनः शतांश करी तारा सम सूक्ष्म जीवेर स्वरूप विचारी। बोले ये तो केवल जो 84 लाख प्रकार का है, क्या बताया जीवगण नहीं, क्या बताया ये 84 लाख क्या है, ये पैकेज है कवर, हम लोग सब क्या बैठे हैं सब, दिस ऑल कवर, ढक्कन है उसके अंदर जो जीव है वो क्या है, बल्कि सब उसके संदा समान है, पूरे 84 लाख भर डिजाइन के अंदर से बैटरी है, बैटरी तो सेम 1.5 वोल्ट हाँ सब में से, चाहे बैटरी में कैमरे में लगाओ, चाहे इसमें लगाओ, चाहे टर्च में लगाओ, किस में लगाओ, रेडी में सब बैटरी सब एक ही दम के, बोले वो कैसे है बैटरी, न केशाग्र शतभाग से सतधा कल्पित च, एक कल्पना कि केस मतलब आपके जो बाल होता है, एक बाल को उखाड़ कर उसके नोक लीजिए, उसके नोक को 10,000 हिस्सा कीजिए, एक हिस्सा जितने होगा कर सकते हैं 10,000 हिस्सा, ऐसे बाल को नोक को लगाने से समझ नहीं, देखने नहीं आएगा, चश्मा लगाना पड़ेगा, और उसको 10,000 हिस्सा करेगा, इतने सूक्ष्म है, सो इनसिग्निफिकेंट, सो स्मॉल, ये जो बैटरी है हमारे अंदर फिट किया गया है, हमारे अंदर जो बैटरी चिट्टी के अंदर वही, पेड़ के अंदर वही, हाथी के अंदर वही, जलचर सारे प्राणी के अंदर सेम बैटरी फिट किया गया, तो बैटरी का साइज कितने बड़ा बताया, 10,000 part ऑफ द टिप्स ऑफ द हेयर, एक बाल के नोक को अब साइज मापो, उसको 10,000 हिस्सा करके हिस्सा, इतने बड़े कल्पना लगभग इतना, ये भी नहीं उससे भी छोटा हो रहे, एक मोटा मोटी अंदाज होता है कल्पना हिसाब से इतना ही है, लेकिन उससे भी छोटा, इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म बैटरी फिट है, ये है जीव के स्वरूप। बताकर कहते हैं अब ये बैटरी फिट किया, जितने सब मनुष्य है बाकी तो छोड़ दो, जितने सब बाकी जोनी गिना के छोड़ दो, केवल मनुष्य जोनी की बात कहता हूँ। कहते हैं तारा मध्य स्थावर जंगम दुई भेद, जंगम तिरजक जल स्थल चर भेद, और उसमें स्थावर जंगम तिरजक जलचर स्थलचर ये सब भेद है। तारा मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, इसे बता केवल 4 लाख गिनती मनुष्य है, अति अल्पतर तारा मध्य मृक्ष कोलिंद बौद्ध सबर, ये मनुष्य में भी वेराइटी है, कोई मृक्ष है, कोई पुलिंद है, कोई बुद्ध है, कोई सबर, समझते ना ये सब, जानते ना उनके बारे में, मतलब जो मृक्ष है वो क्या करते हैं, मृक्ष पुलिंद उनका क्या होता है, मनुष्य तो देखने तो मनुष्य शरीर है लेकिन उनका चेतना कैसा है, पशु से कुछ ज्यादा नहीं है, सेम ओनली बॉडी डिफरेंट है, केवल कवर डिफरेंट, पैकेट डिफरेंट है, लेकिन मसला बिल्कुल सेम है, ओ ही आहार निद्रा भय मैथुन, दैट्स इट, कुछ नहीं करेंगे बस। इसी प्रकार से ये जो जाति गिना दी, मृक्ष पुलिंद बौद्ध सबर, ये कैसे झगड़ा झाटी कर कार के लख्या, केवल कमाऊं खाऊं मरूं, कमाऊं खाऊं मरूं, हम भी कुछ ज्यादा नहीं है, हम भी इसी खाता में आते हैं, देख लेके भले आयरन के अभाव कपड़ा पहन लिए, लेकिन है तो वही चीज है ना, नहीं कभी कभी बोलते हैं नहीं हम इनकी तरह थोड़ी खाते हैं, हम तो अभी प्लेट लगाएंगे, बफे सिस्टम चकाचक बन रहा है, अभी बैठ कर थाली में फैन का नीचे चम्मच में बैठ कर खाएंगे, इसे थोड़ी खाते हैं। और वो बेड के नीचे सो जाते हैं, हम तो बेड में एसी लगा करके सोते हैं, कभी कभी नॉन एसी भी सो जाते हैं लेकिन सोते हैं। और इस प्रकार एसी बसों भी चलते हैं और क्या, और क्या एसी थोड़ी। तो यद्यपि हम वही खान पान रहन सहन करते ही हैं, लेकिन हमारा उनके बहुत फर्क है ना, क्या भद्र भाव से बड़े सिविलाइज्ड बड़े ढंग से करते हैं, उनके तरह ऐसे ही रास्ता में। तो शास्त्र कहते हैं बात अब सही कहते हो, आपका आहार निद्रा भय मैथुन उनके, वो भी वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़े ढंग से कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको साधारण पशु नहीं, आप एक ढंग के पशु हैं, सिविलाइज्ड एनिमल है, एनिमल तो है ही है लेकिन भद्र पशु। ये अभद्र पशु आप शिक्षित भद्र पशु है ना, बाकी है तो वही काम करते हैं, उनका पेट भरना नहीं जाना, आप भी वही काम कर रहे हैं। तो इसी में भी ये जो मृक्ष बुलिंद पुलिंद बौद्ध सबर आदि आदि जो इस जोने वाले हैं, जिनका केवल मन चैतन्य बुद्धि और ऊपर जाता नहीं, केवल इसी में फंसा हुआ है, उसमें पशु से उनके अंतर क्या होगा, अंतर कुछ नहीं। क्योंकि शास्त्र में कहता है आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्यम एतत् पशुभि नराणाम, पशु पक्षी प्राणी और मनुष्य कंपल्सरी ये चार काम तो करना ही पड़ेगा भाई, इससे तो बच नहीं सकते। तो फिर अंतर क्या है मनुष्य में और प्राणियों में, न धर्म ही तेषाम अधिक विशेषो धर्मे न ही ना पशुभि समानः, एक ही अधिक कार्य है, चार को छोड़ चार तो करना ही करना है, वन एडिशनल एक्टिविटी वन एक्स्ट्रा ड्यूटी जिसको कहते धर्म को आचरण करना। ये धर्म आचरण केवल मनुष्य ही कर सकता, मनुष्य के अलावा और कोई, अभी आपने जो क्लास में बैठे हैं कोई बिल्ली कुत्ता चिड़िया कितने बढ़िया कोई आकर बैठेंगे, केवल वो भी नहीं बैठते, रूम में सो जाते, पैसा देकर आए इसलिए फिर भी सो जाते, हम क्या करें। तो केवल मनुष्य ही काम कर सकता धर्म आचरण, तो जो धर्म आचरण करते हैं उन्हीं को मनुष्य पदवाच्य कहा जाएगा, इसको कहते हैं। तो उसमें भी जो धर्म आचरण करते हैं बोलते हैं वेद अनिष्ट मध्य अर्धे क वेद मुख्य माने, वेद अनिषिद्ध पाप करे धर्म नाही गणे। उनमें से कई कई जैसे अब चंडीगढ़ वाले हैं जो तिलक कंठी लगाने वाले हैं, वो बोलते हैं हम सब वेदांति है, दांत सबका है लेकिन हम वेदांति हैं, हम वेद नियम को पालन करते हैं, शास्त्र नियम को पालन करते हैं। वो केवल कैसे करते हैं, न मुख में बोलते हैं, करते कुछ नहीं। ये भगवान इधर कहते हैं कि वेद अनिष्ठा जो बोलते हैं कि हम वेद करो निष्ठा रखते हैं, शास्त्र को निष्ठा रखते हैं, शास्त्र को मानते हैं, वेद वेदांत को मानते हैं, कैसे मानते हैं, न वेद अनिष्ठ मध्य अर्ध का वेद मुख्य माने, उसमें तो आधा से ज्यादा केवल मुख में मानते हैं वेद शास्त्र है लेकिन करते क्या है, न वेद अनिषिद्ध वेद में जो मना किया गया जो निषिद्ध कर्म है पाप कर्म आदि को करते, वेद अनिषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गणे, उसको धर्म नहीं करते, अधर्म कर्म पाप कर्म करते रहते हैं। और जो धर्माचार्य बोलते नहीं हम तो धर्म पालन करते हैं, उनके बारे में धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, जो धर्म को पालन करने वाला धर्माचारी है वो केवल कर्मी है कर्मनिष्ठ है। कर्मनिष्ठ समझना किसको कहते हैं, समझ रहे कर्मनिष्ठ किसको कहते हैं, कर्मनिष्ठ इसको कहते हैं जो शास्त्र में कर्म दिया गया हूबहू उसी को करेगा, लेकिन लक्ष्य क्या है स्वर्ग भोग, कर्मी इसलिए काम करता हूँ सुख मिलेगा नहीं तो काम थोड़ी करेगा। आप बताइए हम जितने यहाँ बैठे हैं कोई भी काम करने के लिए उसे बता दे भाई ये करो, आप इमीडिएट क्या पूछेंगे क्या फायदा है, पूछेंगे ना नहीं, उसके बिना आगे बढ़ेंगे संभव ही नहीं, बात नहीं बढ़ेगी। अरे भाई रूम में चाबी ले लो ऐसी है क्या क्या भाई, इमीडिएट बिना फायदा में तो इंच भी नहीं बढ़ेंगे। तो इसीलिए जो कर्म करते हैं वो केवल एकमात्र लक्ष्य क्या है, सुख प्राप्ति, सुख के प्राप्ति के लिए जो जाग यज्ञ हवन जपन आमी जो जप तप ऐसा लक्ष्य है मैं सुखी हो ले दे करके बटम पॉइंट आई है। तो इसी को सब कर्म ही कहते हैं, भले राम राम करते रहें लेकिन हे सारे कर्म। हाँ, खूब श्लोक पढ़ते हैं, खूब जप तप साधन करते हैं, लेकिन लक्ष्य के ऊपर निर्धारण होता है किसी कोटि में है। लक्ष्य अगर उनका सुख प्राप्ति है तो तब फिर उनको क्या बोला जाएगा? कर्मी। अब बोलते हैं कि हम डेली चिता चैतन्य 56 तिलक लगा करके इसी प्रकार आता हूँ, लेकिन है ही सर कर्म। धर्मचारी मध्य अधिक कर्मनिष्ठ, उनका निष्ठा कर्म में है। कर्मनिष्ठ कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। बोले ऐसे करोड़ कर्मी बीच में एक कोई ज्ञान निष्ठा होगा। बोला नहीं नहीं, ये खूब सुख देख लिया, इसमें कुछ नहीं है। स्वर्ग में भी जाकर देखा, क्योंकि स्वर्ग में जो गए वो फिर क्या होता है, अरे भाई आप जैसे चंडीगढ़ से उच्च आहार एक्सप्रेस पकड़े इलाहाबाद तक, आप फर्स्ट क्लास ए सी में टिकट किए थे, लेकिन कहाँ तक चला टिकट? इलाहाबाद स्टेशन के बाद गेट आउट हुआ ना, नहीं क्या मतलब है? तो इसी प्रकार कितने जाग जज्ञा करते करते उपवास व्रत नियम करके स्वर्ग गए, खीणे पुण्य, जैसे पुण्य खीण हो गए गेट आउट, फिर वही आ जाएंगे। खीणे पुण्य मरते लोकंग भी संधि, तो इसे फायदा क्यों कर करते, धार तो नहीं हुआ। तो इसी को कहते हैं जो, लेकिन वो जान चुका है कि इसमें भी कुछ नहीं, कि आना ही पड़ेगा, ये तो टेम्पररी है। जिनको ये पता चल गया कि समस्त सुख के पूरे ब्रह्मांड में सुख के कुछ है ही नहीं, सब बेकार टेम्पररी, स्वर्ग में जाकर देख लिया यहाँ फिर आना पड़ता है, यहाँ भी देख लिया नहीं आना पड़ता है, इस प्रकार ज्ञान जिसको हो गया, बोलते करोड़ों कर्मियों के बीच में एक जो जानकार हो गया वो श्रेष्ठ है। कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। ज्ञानी कौन, समझ में आया? कौन ज्ञानी है? ज्ञानी का लक्ष्य, जैसे कर्मी का लक्ष्य क्या होता है? सुख प्राप्ति। ऐसे ज्ञानी का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हाँ, क्या बोले प्रभु जी? हाँ, वो मुख्य होते हैं, मुख्य चाहते हैं, मुक्ति होना चाहते हैं ज्ञानी, मुक्ति कामी। मुक्ति मतलब छूटू यहां से, यार बहुत हो गया, टू मच, छूट कर जाके क्या करूं, बस फिर दुनिया में कभी ऐसे शरीर ही ना मिले मुझे, जीरो हो जाऊं, जीरो हो जाऊं, लीन हो जाऊं, बस खत्म। क्योंकि अगर बोलेंगे कि तुम फिर आयो सेवा करो, अरे राम राम राम, बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ, मैं तो कुछ भी नहीं बनना चाहता, मैं जीरो होना चाहता हूँ, बिल्कुल खत्म करके लीन होना चाहता। इस प्रकार जो मुक्ति की इच्छा, ये बोलते मुख्य काम विज्ञान, बोलते कर्म इसे तो बेटर है। कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त। बोलते इसे करोड़ों ज्ञानी जो मुक्ति कामी है, मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, सभी तो मुक्ति तो होता नहीं किसका, करोड़ों मुक्ति के प्रयास करने वालों में से मुक्ति मिलता है किसको? एक को। रेशियो है 1 crore is to 1। करोड़ आदमी मुक्ति के कामी, मुक्ति कामना करने वालों में से एक को मुक्त अवस्था प्राप्त होता है। और वो जो मुक्ति एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। बोलते ऐसे जो मुक्त भाग है छोड़ कर लीन हो गए, इनमें से करोड़ों में बहुत दुर्लभ एक कृष्ण के भक्त होना, करोड़ों मुक्तों के बीच में दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। क्यों किस माना गया? क्योंकि वो भी मुक्ति के कामना रखता है, एक तो एक आशा है ना, वो भी गड़बड़ है मुक्ति आशा। बोलते जो ये सब अशांत है, वो भी लगा हुआ है, मुक्ति भी अशांति, ज्ञानी भी अशांति, कर्मी भी अशांति, और बाकी सब तो अशांत है ही है पशु के जैसा। तो इसलिए बोलते कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त बोलते हैं मुझे कोई कामना नहीं, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, भुक्ति भी नहीं चाहिए, और सुख भी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट इट। फिर क्या चाहिए? ना केवल मैं सेवक हूँ, प्रभु सेव्य है, ना सही काम, दैट्स इट, ये शांत। फिर कोई टेंशन नहीं उसका। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। ये अशांत रहेंगे अपने काम में। कृष्ण चरण कल्प वृक्षे, ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाय भक्ति लतावीज। अब शिक्षा के एक गंभीर विषय बताते हैं कि हे रूप सुनिए, ये ब्रह्मांड में इस प्रकार जिसे अभी मैं बताया से 84 लाख के वैरायटी में मिला करके इतनी प्रति चेतना मिला करके अनंत कोटि प्रकार के जीव अनंत कोटि चेतना में लख लख प्रकार से ज्वनि में भ्रमण करते हैं। ब्रह्मांड भ्रमित कौन, इस जीव भ्रमण करते हैं ब्रह्मांड में। भ्रमण मतलब आप जैसे चंडीगढ़ से इलाहाबाद आ गए, ऐसा नहीं कभी मनुष्य ज्वनि में, कभी पशु ज्वनि में, कभी पक्षी ज्वनि में, कभी देव ज्वनि में, कभी त्रियक ज्वनि में, कभी कीड़े ज्वनि में, कभी एक्वाटिक से चलता रहता है। केवल ज्वनि में नहीं, कभी बाप बनते हैं, कभी माँ बनते हैं, कभी दादा बनते हैं, कभी भाई बनते हैं, कभी दादी बनते हैं, कभी बेटा बनते हैं, कभी बेटी बनते हैं, वो भी पोस्ट बदलता रहता है। ऐसा नहीं कि ये मेरे पिताजी उनके सेवा करूँ, नहीं वो पिताजी भी पहले तुम्हारा बेटा थे, ये भी हो सकता है, तो पोस्ट बदलता रहता है। तो इस प्रकार के इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं, इसी बोलते हैं ब्रह्मांड भ्रमित। लेकिन ब्रह्मांड भ्रमण करते 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 कोई भाग्यवान जीव है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव। भाग्यवान समझते हैं किसको कहते हैं, कौन है भाग्य, किसको समझते हैं हाँ? भाग्य साधारण भाषा भाग्य किसको कहा जाता है, नहीं भाग्य मतलब पूर्व जन्म का सुकृति जिसका इकट्ठा, जो बहुत अच्छे कर्म किया है, अच्छे कर्म के परिणाम सदृश उनको अच्छा रूप मिला है, अच्छा गुण मिला है, अच्छा धन मिला है, अच्छा व्यवहार में, ये सब जो है, ये जो सड ऐश्वर्य है, इसको क्या कहा जाता है, कहना जो दिखने में बिल्कुल खूबसूरत है उसको क्या बोलेंगे, वाह होना पड़ेगा कितने भाग्यशाली है, क्या चेहरा है ना, को बहुत ज्ञानी है उसको क्या बोलेंगे, मानना पड़ेगा कितने भाग्यवान है, उसका बहुत पुण्य इकट्ठा होगा, कोई बड़ी धनवान करोड़पति बोलते हैं भाग्य है उसका, है ना, नहीं हम तो हतभागा 2 रुपया में चलते, ये तो भाग्यवान है करोड़ों डॉलर के मालिक, इसको मानते ना भाग्यवान। साधारण आम भाषा में भाग्यवान इसी को समझते हैं जिनके पास ये सब ऐश्वर्य एक पर रूप गुण बल धन आदि ये सब जो शक्ति आदि ये सब ऐश्वर्य जिसके पास होगा उसी को हम साधारण भाषा भाग्यवान समझते हैं। तो ये कहते हैं ये ब्रह्मांड में इसी प्रकार भ्रमण करते करते कोई भाग्यवान जीव जिनका सचमुच भाग्य है, भाग्य का फल है कि उनको पहले जन्म का कर्म का परिणाम बहुत कुछ अच्छा प्राप्त हुआ, सुख सुविधा प्राप्त हुआ, ये भाग्य माना जाता है। तो ये सुख सुविधा प्राप्त करने वाले जो भाग्यवान जीव है सर्वश्रेष्ठ भाग्य के परिणाम क्या प्राप्त करते हैं, सबसे सर्वोच्च भाग्य के फल उनको प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त होगा, गुरु और कृष्ण की कृपा, गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त होगा, ये है सर्वोच्च भाग्य के फल। जैसे मैं आपको बताया साधारण आम जनता ने भाग्यवान उसी को मानते हैं जिनके पास धन हो गुण हो बल हो इत्यादि हो, लेकिन भगवान भाग्यवान के हिसाब से एक बात कहते हैं भगवद गीता में, सुकृतिवान, सुकृति मतलब कृति मतलब कर्म, सु मतलब अच्छा, अच्छा कर्म पुण्यवान किसको मानते हैं, भगवान गीता में 7वां अध्याय में एक श्लोक कहते हैं, चतुर्विधा भजते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुनः आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भारतर्षभ, पता नहीं श्लोक, इसमें भगवान कहते हैं कि चतुर्विधा चार प्रकार के सुकृतिवान अर्जुन, चार प्रकार के सौभाग्यवान व्यक्ति होते हैं दुनिया में, तो गिनाए भगवान ने 1 2 3 करके, महासौभाग्यवान व्यक्ति भगवान बोलते हैं कि चार ही प्रकार के सौभाग्यवान होते हैं। सबसे पहले सौभाग्यवान नंबर 1 कौन है, आर्ति, आर्त, आर्त समझते हैं किसको कहते हैं, डिस्ट्रेस्ड, तो अंग्रेजी में बोल दिए, डिस्ट्रेस किसको कहते हैं, पीड़ा, पीड़ा नहीं, पीड़ा से जो युक्त है वो पीड़ा आर्त नहीं, आर्त एक प्राणी होता है जो आर्त चित्कार करता है अंदर से, हार्ट से बोलता है प्लीज सेव मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज मर गया बचाओ बचाओ करके जो भाग रहा है गली गली में, उसको क्या कहेंगे, ओहो कितने भाग्यवान, कितने सौभाग्यवान है रे, कहेंगे कभी, क्या कहेंगे आपने, हाय हाय कितनी दुर्भाग्य, यही बोलेंगे ना। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, भाग्यवान नंबर वन, गड़बड़ नहीं। भाग्यवान नंबर टू कौन है, अर्थार्थी। अर्थार्थी किसको कहते हैं, अरे 2 रुपया दे दो यार प्लीज, मर गया बच्चा हुआ 2 रुपया दे दो, बहुत परेशानी में हो, दे दो यार। ऐसे हाथ पता पता कर गली गली कोई फिरे मांगते रहे, उसको आप कहेंगे कि हा 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 बड़े सुकृतिवान है, कहेंगे क्या कहेंगे, कितने हद तक आ गया कहेंगे ना। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, सौभाग्यवान नंबर दो। बड़े गड़बड़ी व्यापार है, हमारा शब्द शब्द को सुन के शब्द को सुन के गड़बड़ी है क्या, हमारा डिक्शनरी तो कुछ अलग बोलता है, नहीं सेम है शब्द का अर्थ सेम है। लेकिन भगवान फिर इसे उल्टी बात क्यों कह रहे हैं कि ये भिखारी जिसे चिल्ला रहा है बेचारा बचाओ बचाओ, उनको भगवान कहते हैं। भगवान के कहने का अर्थ को समझो, भगवान कहते हैं चतुर्विधा जनहा सुकृति नो अर्जुन, जो 4 प्रकार के सुकृतिवान अर्जुन, वो सुकृतिवान कैसे बने, ना भजते माम, किस कारण सुकृतिवान बने। भगवान कहते हैं कि आर्त अवस्था में भी ऐसे दर दर चित्कार करके भटकने अवस्था में भी किसी के पास न जाकर अगर मेरा पास आया, मेरे भजन किया, भजते माम, 1 रुपया भी नहीं है, दर दर भटकते हुए भी कमांग कर इतने परेशानी की अवस्था में किसी के पास न जाकर अगर मेरे पास आया, भजते माम, इसी अवस्था में भी चाहे जान करके हो, चाहे जिज्ञासु होकर हो, चाहे आरती होकर हो, चाहे अर्थ की आवश्यकता के कारण हो, किसी भी प्रकार से अगर भजते माम, अगर मेरे पास आया, मेरा भजना किया, तो ही है सौभाग्य। जब तक जीव किस जैन तेन प्रकार किसी भी प्रकार से कृष्ण के चरण में शरणागत नहीं होता, उनके द्वार में हाथ नहीं पताता, उनके भाग्यवान के खाता में नाम नहीं उठेगा। आपके भाग्यवान के लिस्ट में नाम जब ही उठेगा, जब आप कृष्ण के पास समर्पित होंगे, तभी भाग्यवान शुरू होगा, भाग्य शुरू होगा, तभी भजते माम से शुरू होता। जब तक कृष्ण भजना नहीं करते हैं तब तो भाग्य तो है ही नहीं, सभा तो भागा, सभा तो भाग। इसी को भागवत में प्रथम स्कंद में श्लोकों कहा गया, कलिजुग का लक्षण में क्या है, कलिजुग मंद भाग्य, भाग्य है नहीं, कृष्ण भजन नहीं करते सब, भाग्यवान तो ही भाग्य। तो उन भाग्यवान में भी यहाँ श्री महाप्रभु कहते हैं, श्रीमन महाप्रभु कहते हैं इस ब्रह्मांड में जीवगण में भ्रमित करते करते इसी प्रकार को भाग्यवान, जो मतलब जो सचमुच कृष्ण को जान चुका है, हे ठाकुर हे कृष्ण मुझे मदद करो, इस प्रकार जो कहते हैं हम जैसे लोग, इनमें से इस ब्रह्मांड में कई शरीर में कई पोस्ट में घूमते 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 भाग्य की जब कृतपुण्य पुंजिया जो इकट्ठा होता है, ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव, जो भाग्य इकट्ठा हो जाता है तो क्या प्राप्त होता है, सर्वोच्च भाग्य से क्या प्राप्त होता है, कृष्ण की कृपा, और कृष्ण की कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं, फिर गुरु की कृपा से कृष्ण प्राप्ति होते हैं। तो गुरु और कृष्ण की कृपा ये महा महा सौभाग्य की फल है। अब समझ लेके सोचिए, व्हाट इज दैट कृपा, ये जो गुरु की कृपा कृष्ण की कृपा, व्हाट इट इज, कोई लिक्विड है या सॉलिड है ना गैस है, कौन सा मटेरियल है, किसी बताए, जो मर्सी है जो कृपा है, व्हाट काइंड ऑफ मैटर इट इज, बताएंगे इसमें, कृपा कर दीजिए, कृपा है क्या कर दूं, कोई पानी डाल दूं, पत्थर डाल दूं, क्या करूं, कृपा कैसे कर दो, तो पता ही नहीं है क्या चीज़ हो, हमेशा कृपा कृपा करते हैं, व्हाट इज दैट मैटर। यहां कहते हैं महाप्रभु कृपा क्या, कृपा होता है एक सीड, क्या होता है सीड, सीड जानते हैं ना, देखे तो होंगे सब्जा सीड, हम डेल डालते हैं खाने के लिए, और कोई सीड होता है, नीम के सीड, हर एक फूल फल का तो सीड होता ही है, आजकल खूब आम खाते हैं, आम के अंदर सीड निकलता ना, है ना, नहीं हाँ सीड, सीड खूब खाते, तो सीड होता है क्या, लेकिन कौन सा सीड है, आम का, किसका सीड, भक्ति लता का जो सीड है वो है कृपा के परिणाम, गुरु और कृष्ण के कृपा का फल है ये सीड ऑफ भक्ति लता, भक्ति लता बीज, उसके बारे में कहते जी भक्ति के लता है बड़े नाजुक, वेरी डेलिकेट, वेरी डेलिकेट, और उसके बीज आपको मिला। जो बीज मिल गया तब गुरु और कृष्ण का कृपा का काम हो गया, वो छुट्टी ले लेंगे, बोले हो गया हमने कृपा कर दिया। क्या कृपा कर दिया? आई हैव गिवन यू दी सीड, अब आपके ड्यूटी आप संभालो, मैं जा रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु यही शिक्षा देते हैं, जो महासौभाग्यवान व्यक्ति हैं उनको गुरु और कृपा, गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति के लता, भक्ति लता का एक बीज प्राप्त हो गया, बीज प्राप्त हुआ और उस बीज को हमको मिल गया। अब उसको हमारा ड्यूटी शुरू हुआ। हम बोलते हैं कि हम तो दीक्षा ले लिया, अभी हम गुरु के काम है, हमारा तो छुट्टी, यही से नहीं, अभी हमारा काम शुरू हुआ, उनके काम छुट्टी वो दे दिए, अभी और ड्यूटी स्टार्ट। तब क्या ड्यूटी स्टार्ट है? ना माली हया सही बीज करे आरोपण, अब माली कौन बनेगा? गुरु कृष्ण बनेंगे? नहीं, जिनको बीज प्राप्त हुआ, जो कृपा प्राप्त किया वही माली बनेगा। तो मतलब इससे उद्घोष लक्षण है कि जो खेती करने वाला है, जो कर्षण कर्म करता है, खेती को उगाता है, ये कृपा को प्राप्त है, सीड मिला है, नहीं तो करेगा थोड़ी। जो खेती नहीं करता है वो भगवान ने कृपा प्राप्त नहीं किया। खेती करना मतलब क्या है? अभी हम सब जब जो किसी को कृपा प्राप्त है वो क्या पहचान है उसका? खेती शुरू कर दिया उन्होंने, जो खेती का काम शुरू किया मतलब उनको सीड मिला है, कृपा मिल चुका है। अब खेती करने के लिए सबसे पहले आवश्यक क्या है? अरे बाबा, एक जमीन तो चाहिए ना, किसी में डालेंगे बीज को? आपके पास कोई जमीन ही नहीं है, ये मार्बल में टाइल तो ऊपर खेती कहाँ करेंगे? अब कोई खेती होना चाहिए ना, खेत के बिना खेती कैसे करें? तो अब पहले समझो हमारे पास खेत है कि नहीं, बोलता हम तो सब फ्लैटस्थ हैं, फ्लैट में रहते हैं, वो सिक्स्थ फ्लोर में, ट्वेल्थ फ्लोर में, खेती तो है ही नहीं। भगवान ने सबको खेत दिए हैं, वो खेत क्या है? अपना हृदय। तद अस्म सारम हृदय अंग बतेदन, सभी का जो अपना अपना हृदय है वही है अपना खेती। अब ये खेत में खेती करना होगा, खेती करने से पहले जो अच्छा किसान है सबसे पहले खेत में क्या देखेगा कि खेत उपजाऊ है कि नहीं। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे हमारा हृदय जो है ये कंकड़ पत्थर से भरा हुआ है, बिल्कुल लोहे का चट्टान है, या बंजर है, बंजर समझते ना, जिसमें घास में नमक उगता है वो है, या उपजाऊ है। कोई चेकटा किए? सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा, पहले बीज को लाओ, रख दो भाई, पहले देखो तो खेती करने के जमीन सही है कि नहीं। अगर जमीन सही नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? उसे सही करना पड़ेगा। पत्थर कंकड़ को बुलडोजर बुला करके, खेती के ट्रैक्टर फटर लाल करके, उसको उठा करके, फिर कुछ मिट्टी डाल करके उसको उपजाऊ करना पड़ेगा ना। अगर बंजर भूमि है उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करके उनको खेती करने के लायक बनाना पड़ेगा। सबसे प्रथम आवश्यकता हम लोग का ही है, हम जिस फेज में है अभी हमारा हृदय के ऊपर हम लोग को कर्षण करना पड़ेगा, बुलडोजर चला कर उसको उपजाऊ करना पड़ेगा। ये इतने कठिन निष्ठुर हो चुका है, इतने द्वेष लोभ आज भर पड़ा है, वही सब कंकड़ पत्थर को निकाल करके उसको मुलायम सही करना पड़ेगा। ये प्रक्रिया पहले सबसे होना चाहिए, खेती को तैयार करना चाहिए, उपयोगी उपजाऊ करना चाहिए। अगर खेती तैयार हो गया उपजाऊ, तब उसके ऊपर बस बीज को बोएंगे। बीज बो देने से काम बन जाएगा क्या? फिर क्या करना पड़ेगा? सिंचाई करना पड़ेगा। अब पानी कहाँ से लाएंगे? जब हृदय हो गया खेती, भक्ति लता का बीज हो गया है, कृपा कृपा बीज है, तब फिर पानी कौन सा होगा? ये टैप वाटर, म्युनिसिपैलिटी वाटर, कौन सा पानी में सिंचाई करेंगे? श्रवण कीर्तन जले करे सेचन, ये जो जल है वो श्रवण और कीर्तन है। देखिए जो आप जो बगीचा उगाते हैं, पानी का इम्पोर्टेंस कितना है? सबसे ज़्यादा है ना, नहीं? पहले भी चाहिए, बाद में भी चाहिए, अंत तक चाहिए। कवि वंदने के एवरी डे इट्स रिक्वायर्ड सो दैट्स अ हियरिंग एंड चैटिंग इज सो इम्पोर्टेंट एवरी डे मॉर्निंग एंड इवनिंग इट इज सुखजा इट इज सो इम्पोर्टेंट जल श्रवण कीर्तन जल क्रिया सेचन अभी सेचन किए श्रवण कीर्तन थी कि आप एक्सपर्ट डिवोटी हैं अच्छे डिवोटी श्रवण कीर्तन करके सेचन के तो क्या होगा अभी बीज उगेगा जब उगेगा तो पत्ता करके ऊपर उगेगा तो अभी सबसे भय रहता है कि कोई भेड़ बकरी ना आकर खाना जाए है ना नहीं अरे भेड़ बकरी घूमते रहते हैं देखेंगे कोई नया पत्ता होगा कि चर जाएंगे जाकर तो क्या तो उसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगा क्या व्यवस्था करें फेंसिंग करना पड़ेगा अब फेंसिंग किससे करें जैसे हृदय हो गया खेती श्रवण कीर्तन हो गया पानी कृपा हो गया बीज उसका जो बीज होगा इसको बड़ा बंदी किस में करेंगे बांस में ना सीमेंट में ना ईंट में किस में करेंगे एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज ये है फैंसी भक्त के संग ही ये बड़ा बंदी है बिल्कुल टाइट डिवोट एसोसिएशन में रहना है थोड़ा सा लूज हो गया तो क्या फिनिश वहीं पर चढ़ जाएगा कोई आकर खत्म दो ही पत्ता हो गया उसको बकरी खा गया जाकर फिर उगेगा खत्म तो इसलिए फ्रॉम द बिगिनिंग जिस दिन से बीज उगने लगा अंकुरित होने लगा उसी दिन से एसोसिएशन बड़े स्ट्रांग करके रखो बड़ा बंद के रखो ताकि कोई चर ना जाए उसको अब उगने लगा फिर थोड़ा धीरे धीरे रुकना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं थोड़ा अमोनिया और थोड़ा खेत में खाद उठा डालते ना क्या बोलते हैं यूरिया मेडिसिन मतलब कुछ उसको पुष्ट करने के लिए फर्टिलाइजिंग करना पड़ता खाद आदि देना पड़ता है तो दिए थोड़ा बढ़ने के लिए लेकिन आपको पता है आप बीज बोए धान का खेती सब पता है ना पंजाब में तो धान राइस होता है ज़्यादा तो धान का खेती बोए वो उसी के लिए पानी दिए उसी के लिए खाद दिए लेकिन धान के अलावा 50 और दूसरा चीज उठेगा हम उसको नहीं चाहते बोए भी नहीं लेकिन बिना बोए उठता है उसको हम क्या बोलते हैं खरपतवार उसको हमारे भाषा में उसको बाड़ूंगा बोलते हैं इसलिए बदमाश है तो उसको उखाड़ देते हैं हमने उखाड़ कर फेंकते हैं लेकिन फिर पानी तो फिर उठता है पता नहीं कैसे उनके पैसे कभी खत्म नहीं होता हमेशा उठते हैं और वो इतने निलज्ज है ना तो हम उनके लिए खाना देते हैं ना आसन देते हैं बोलते कुछ नहीं करते अनइनवाइटेड गेस्ट लेकिन इतने तेजी से बढ़ते हैं खाद को लेकर के जो मूल पौधा है उसको तो दबा ही देते हैं सबसे कठिन बात रहस्य की बात यह है क्या जानते हैं ये जो खरपतवार है अनावश्यक पौधे और जो धान की पौधे वो देखने में बिल्कुल हूबहू समान बिल्कुल अंतर नहीं जान पाएंगे विच इज द रियल भक्ति पौधा भक्ति लता और ये अनावश्यक लता क्या है फिर देखने में बिल्कुल समान बाहरी एक्सटर्नली सेम कैसे जानेंगे बहुत सारे भक्तों का हमारे संस्था में यही सिचुएशन में फंस जाते हैं कि यहाँ तक तो आ जाते हैं एसोसिएशन करते हैं हेयरिंग चैटिंग करते हैं कृपा लब थकी सब कुछ किए आ करके जब पुष्ट करने के लिए भक्ति वैभव भी करते हैं शास्त्री भी करते हैं और खाद डालते हैं बढ़ाने के लिए लेकिन पता नहीं चलता कि ये भक्ति लता है कि अनवांटेड खरपतवार है कि दोनों देखने में सेम लगता है और जब उखाड़ते हैं बोलते पड़ते हैं उखाड़ देना चाहिए अनावश्यक को उखाड़ करके तो किसी को उखाड़ देते हैं भक्ति लता को उखाड़ देते हैं अनावश्यक यहीं पर मार अब जानते हैं अनावश्यक पौधा क्या है भक्ति की लता के साथ अनावश्यक तुलना के अनावश्यक पौधा खरपतवार है क्या चीज लाभ पूजा प्रतिष्ठा कुटी नाटी ये सब जो है उसी को हम भक्ति मान कर बैठे और इसी को परिपोषण करते निषिद्ध आचरण निषिद्धाचार कुटी नाटी भगवान नहीं कहे लाभ निषिद्धाचार कुटीनाटी जीव हिंसन एक एक करके बड़ी सीरियस है क्योंकि हम लोग इसी में फंसते हैं निषिद्धाचार कुटीनाटी जीव हिंसा और लाभ पूजा प्रतिष्ठादि जत उपशाखागण। भगवान कहते हैं उपशाखा कौन कौन है, छह चीज है उपशाखा, बड़े ध्यान से समझिए। नहीं तो एक तो है सबसे पहले निषिद्ध आचरण। निषिद्ध आचरण किसको कहते हैं? हाँ, जो आचरण को करना नहीं चाहिए, जिस आचरण को साधारणतः नहीं करना चाहिए, हमको पता है लेकिन उसी को हम करेंगे। हम डेली सुबह मंगलारती के बाद बोलते हैं इतनादपि सुनी चेना तरुरपि सही सुना, उठ करके थप्पड़ मारो बदमाश, इतनी लेट कर दिया, अभी अभी बोलते बोलते तो सहनशील के जवाब है, ये सही आचरण हुआ? सिद्ध आचरण है क्या? नहीं, निषिद्ध आचरण। द्वेष नहीं करना, हिंसा द्वेष। अब मैं क्या समझाऊं, इतने नस नस में भरा हुआ है, अब भी प्रसाद होगा, सभी अपना अपना प्लेट में बैठेंगे। ऑनेस्टली बताना, जब सर्व हो जाएगा सबसे पहले आपने प्लेट को अब देखेंगे ना, बाजू वाले प्लेट को देखेंगे है ना, नहीं बाद में आपने को देखें, क्यों जी बहन संतोष? अरे भैया तुझे मिलेगा ना? नहीं, क्यों कर ऐसे? भक्ति विनोद ठाकुर उसको कहते हैं कि पर दुखे सुखी और पर सुखे दुखी, मतलब हमारी अवस्था, हमारा पास हमारा ठीक ठाक है, हमारा अपना घर है, कोठी है, प्लाट है, गाड़ी मोटर है, अपना जब है, अपना धंधा बाड़ी है, हमने बेटे भी ठीक ठाक पढ़ते हैं, सब ठीक ठाक है, शांति से रहना से नहीं, फिर भी स्ट्रेस, क्यों कष्ट क्यों है ना? मेरे बाजू में जो है पड़ोसी, उनका दो गाड़ी की बात, मेरा एक, अरे भाई तेरा है, तेरा तो दो गाड़ी जरूरत ही नहीं, उनका दो क्यों है? मर गए बस, अब तुझे 20,000 मिल रहा कम से, उनका इंक्रीमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया, अरे मर गया, शांति खत्म, उनका क्यों हो गया? और कुछ नहीं है, तुम ठीक ठाक हो, खाते इंडेजेशन हो जाएगा, उनका क्यों हो? किसी कारण से बोलते हैं कि जी भक्त तो कभी दुखी सुखी नहीं होता ना, कभी कभी सुखी होता, हमेशा दुखी रहता, कब सुखी होता है ना? किसी को एक्सीडेंट हो गया, हाथ पर टूट टूट गया तो थोड़े सुखी होता, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में पीजीआई में हॉस्पिटल ठीक ठाक कर आ जाता, फिर दुख शुरू हो जाता, फिर अपने कहा फिर दुखी, सभी का हमारा यही दशा। दूसरे के पर उत्कर्ष असहने असमर्थ, दूसरे का उत्कर्ष को देख करके हम सहन ही नहीं कर सकते, ये एक प्रकांड उपशाखा है, खरपतवार है, ध्यान रखिए। जो काम को नहीं करना चाहूं पता है, सहिष्णुता, अमानिता, मानदता, नीचता, ये सब शास्त्र के सिद्ध आचरण है, उसको हम करते हैं। आपका एक दिन की दिनचर्या के अंदर देखे कितने बार उसको तोड़ते हैं, इसे निषिद्ध आचरण उपशाखा। और कुटीनाटी, कुटीनाटी जानते किसे कहते हैं? ये समझने के लिए बड़ा कष्ट है, कुटीनाटी पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स मतलब क्या है? पॉलिटिक्स तो और साधारण कुटीनाटी हो गया, वो क्या होता है? कोई उदाहरण देकर बता सकता है व्हाट इज कुटीनाटी? आपका समय हो चुका है, ये क्वेश्चन आपके ऊपर, नेक्स्ट सेशन मुझे बताएंगे व्हाट इज कुटीनाटी। अब सोचिए सर।